भेंट प्रवचन गुरुदेव। भेंट तीन प्रकार की होती है, रुपए पैसे या धन दौलत की, मन की और आत्मा की। धन की भेंट रुपए पैसे की भेंट सबसे नीची समझी जाती है। गुरु को तुम्हारा रुपया पैसा धन दौलत इसलिए नहीं भेंट की जाती है कि वह इनका भूखा है। आपके धन की उसको जरूरत नहीं है, उसकी जरूरतें खुद ईश्वर पूरी करता है। भेंट वह इसलिए ले लेता है कि उससे आपका उपकार हो और आपका पैसा जहाँ लगे उससे औरों का भला हो। दुनिया के जहाँ और पदार्थ मनुष्य के लिए बंधन है, वहाँ रुपया पैसा भी एक तरह का बंधन है और बंधन टूट नहीं चाहिए। यह दुनिया में फंसाने वाला है, इसे किसी शुभ कार्य में लगाना ईश्वर की भेंट है। इसे किसी शुभ कार्य में लगाना ईश्वर की भेंट है। इस भावना से गुरु को अर्पण किया जाए, इसके साथ साथ बंधन ढीला होता है। भेंट देने वाला तो देकर हल्का हो जाता है, मगर लेने वाले पर इसका बोझ पड़ता है। वो या तो इसका मुआवजा दे दुआ से या और किसी तरह से या अपने शुभ कर्मों में से हिस्सा बांटे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसकी गिरावट होगी। पिछले जमाने में ब्राह्मण कितने ऊंचे थे, उनकी गिरावट का यही सबब है। उन्होंने भेंट का कोई बदला नहीं दिया और भेंट ले ली।
उन्हें मुफ्त की रोटी खाई और भेंट का पैसा, और इस वक्त 99% ऐसे हैं जो कि ये कह सकते हैं किसी जात के लोग। लाला जी महाराज साहब ने बड़ी कोशिश की ऐसा कोई ब्राह्मण मिल जाए ताकि इस विद्या को उन्हें दे दें और उनके लिए। ये वही शख्स कर सकता है जिसको जात पात सबसे, और अल्टीमेटली लिखा है इस वक्त ये विद्या ब्राह्मणों के लायक है। फिर भी कोशिश की चाचा जी महाराज साहब से, कहा मैं फेल हो गया, तुम्हारे साथ हो सकता है। और चाचा जी महाराज साहब ने हरबंश लाल त्रिपाठी को ही इसीलिए इजाजत दी थी ताकि ये ब्राह्मण बन गए। उनके भी शिष्यों में बसकारी समझिए गिरीश बाबू काम कर रहे हैं, बात बाकी सब हो। ताऊजी ने बड़ी कोशिश की। ताऊजी ने भी पंडित काशीनाथ जी थे जिनको सबसे पहले पकड़ा। बाऊजी ने बड़ी कोशिश की। त्रिपाठी जी को सबसे पहले ही जो वहां वाले थे इनके पिताजी को भी पकड़ा, और सभी ने अल्टीमेटली लिख के यही कहा कि इस युग में इनका खान पीन रहन सहन ऐसा हो गया है जिसके वो नहीं। तो एक्चुअली ये जो मंदिरों में भेंट चढ़ाते हैं ये तो हम अपने हित के लिए चढ़ाते हैं, तो कहां माया छोड़ी, कहां आपने माया के लिए और प्रार्थना की। न वो तुम्हें इसके बदले में कुछ दे सकता है वहां का पुजारी, तो सिवा आपका वेस्ट ऑफ मनी। असली भेंट यह है कि जिसको चढ़ाए आप पर भूल जाए और वो उसका इस्तेमाल अच्छे कामों में करे, और अपनी मेहनत की कमाई के लिए आपसे या तो प्रार्थना करें ईश्वर से कि अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा, हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने, उनका तुम्हारे इसमें बेटे था नहीं लेकिन तुम्हारे इस कार से खुश होके हमने तुम्हें इतनी दुनिया और इतना दीन दी। अगर आपको देने के बाद ख्याल रह गया कि मैंने पैसे दिए थे, एक साथ से गुरुदेव अक्सर ले लेते थे, गरीबों को विधवाओं को बांट देते, जो नीडी था। एक दिन उनके सामने दिया तो उनको बड़ा बुरा लगा, उन्हें सभी के सामने, क्योंकि वो ही समझते थे हमारे गुरुदेव सिवाय प्रेम का रिश्ता बांधते थे, और वो ही समझते थे कि भी मेरे हैं तो मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। उनका आपकी चोरी बेईमानी और हराम के पैसे को मैं भले काम में खर्च करके आपकी आफत को ठीक कर, मुझे आपके पैसे ही जरूरत है, और कभी नहीं लिया, कभी नहीं लिया। उनने खुद कहा कि साहब ऐसी ऐसी बड़ी मुसीबतों से उनके बदौलत हम बचे, जिसका कोई वो नहीं। जो पैसा विधवाओं के काम में, गरीबों के काम में, जरूरतमंद के काम में, बीमारों के काम में आता है, उसका ईश्वर भी बरकत देता है। जो पैसा टोटल आप अपने लिए रखते हैं, उन्हें ईश्वर बरकत देता और धीरे धीरे घटता ही चला। दूसरों को तो हम इसलिए देते हैं कि हमारी वाहवाही हो, और दूसरे ये है इस काल से नहीं देते, वो जरूरतमंद है। और जब भी कोई आता था, पहले लोग 2 रुपए से ज्यादा जिंदगी में टीका नहीं था, 1 रुपया 2 रुपये। यहाँ जब एक बढ़ता आए, दारू चौपा में सत्संग हो रहा था, बोर्ड देखे उन्होंने, चलो देखा तो एटा वाले डॉक्टर साहब का था, पहुंचे उनको लोग जिया कहते थे। उनका भैया खोलो और उसमें से 2 रुपए निकाल के, हमने खस के कहा हम लोग डॉक्टर हो गए, रेट तो कुछ बढ़ा दीजिए। अम्मा जी, उन्होंने कहा बेटा हमने तो एक ही रखा और उसी के हिसाब से, वो भी इस कैपेसिटी में थी कि ज्यादा दे सकती थी, लेकिन खाली इसलिए एक साइन ऑफ अफेक्शन, और दूसरे ये है तो वो जानती थी ना जरूरत से। तो जरूरतमंद को सबसे ज्यादा देना चाहिए, बीमारों में ज्यादा से ज्यादा पैसे, विधवाओं को, यतीम को। हमारे गुरुदेव कहते थे बेटे विधवा की आह और यतीम की आह जो है ईश्वर के तख्त को हिला देती है, और सबसे अच्छा परमार्थ के रास्ते पर तरीका है इन दोनों की बराबर मदद कर। लाला जी महाराज साहब ने भी हमेशा ऐसी हमारे गुरुदेव ने भी हमेशा ऐसी लेकिन पैसा अपना वेस्ट भी नहीं किया। और न दूसरों को करने को दिया, तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने भेंट का प्रॉपर बेनिफिट अपने परमार्थ की रास्ते के लिए। किसको दें या किसको ना, यही विवेक होगा, और ये खाली विवेक मनुष्य में है और किसी में। बाबूजी महाराज साहब ने पटना के सब लोग वेल ऑफ थे, उन्होंने कहा भाई ऐसा कर लो, कुछ फंड जमा कर लो, हम लोग को हमेशा दिक्कत रही ईश्वर की दया से, आप वेल ऑफ हो और जरूरतमंदों को दे दिया कर। ये बात पटना के ही लोगों के सामने हुई थी, वहीं के लोगों को ज्यादा ज्ञान था। हम भी उस वक्त छुट्टी पर गए थे, हमें भी मालूम था। उसमें 30-40 हजार रुपया भी जमा हुआ, आज भी चल रहा है वो। औरंग साहब एक उनके कहा साहब कि हमारे बच्चे की शादी है, हमें दे दीजिए। बाबू जी का शुरू से था जब तक पूरी चीज का, उन्होंने सबसे पूछा भैया तुम्हारे कोई जमीन है, तब पूछ से पास तो नहा था 10 बीघा जमीन, उन्होंने कहा वो काहे के लिए, उसको बेचिए शादी करी, उन सब वो अपने लड़कों के लिए, उन्होंने कहा भैया वो लोग भी। उसके बाद डॉक्टर साहब चिट्ठी रखी है, उन्हें कोई फंड की जरूरत नहीं, मेरा ख्याल गलत था, कल को सभी सत्संगी भिखारी हो जाए, इस पैसे को जो भले काम में वहां पर इस्तेमाल कर लें, और गैर जरूरतमंद आदमी ज्यादा मांगेंगे बने की जरूरतमंद को हो सकता है शर्म भी आए, लेकिन बचे हुए आदमी भिखारी बन जाते हैं और हर एक आपके पैसे को लूट। उसके बाद से उन्होंने कलेक्शन बंद कर दिया। पिछले फंड का 3 साल पहले तक तो एक मर्दों ने हमको भेजा था। तो ये भी मनुष्य का विवेक है कि उसका पैसा प्रॉपर उसमें इस्तेमाल हो रहा है, देने वाले की नियत क्या है, लेने वाले की नियत क्या है, वो रियली वर्दी आदमी को दिया जाए। एक साहब से आज तक उन्होंने बस का कराया नहीं। एक दिन बोले साहब हमने बच्चे के जन्मदिन का वो सत्संग रखा है, गए तो हमने देखा सत्संग नाम को था पूरी खाना होना और उन्हें 150 आदमी। उस बाद जब उन्होंने कहा तो हमने ये पैसा हो चलो नहीं तो अपने गाड़ी से, बड़ा बुरा लगा, गए भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ये भी ड्यूटी है आपकी कि देखें साहब, अब लड़के के लिए 150 आदमी के जन्मदिन के लिए खर्च कर सकते हैं और वहां 5 वक्त खाना खाने पर वहां के लिए एक पैसा नहीं दे सकते, ये पूजा नहीं खाली धोखा। तो आपके पैसे का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन, क्योंकि आप लोगों ने वक्त देखा नहीं है, हम लोगों ने देखा है, कुल 20 रुपए जमा होते थे, 10 रुपए ताऊजी देते थे, 10 रुपए बाऊजी देते थे, तब भंडारा चलता, और सबसे पहले ही ग्वालियर के दामोदर दास जी थे, इनने शुरू किया। फिर ये हुआ जब ज्यादा लोग हो गए तो ना भाई जो दे जाए, और आज भी आपने देखा होगा कि सिकंदराबाद का सिस्टम जो भी उनने बदला हो, लेकिन गुरुदेव के टाइम में कभी किसी से मांगा नहीं किया, सिकंदराबाद में भी यहाँ भी जो दे गया वो ठीक है, किसी से मांगा नहीं। और वो कहीं ना कहीं से उसका बंदोबस्त होता था, भाई आखिर घर पर 5 दिन खाना खाते तुम, कुछ तो खर्च होता, उसी खर्चे को दे देते, तुमसे कोई नहीं कह रहा, लेकिन नियत नहीं ठीक होती है। चार चीज जरूरी है, देने वाले की नियत, लेने वाले की नियत, उसकी जरूरत है क्या जरूरत है, उसका इस्तेमाल वो ठीक करेगा कि नहीं करेगा, ये अति आवश्यक है। अगर नहीं है तो खाली आप अपनी वाहवाही में दे रहे हैं, ऐसा विषय ने इतना दान दिया, उसने सब मुकुट पहना दिया कृष्ण भगवान, इसने ये कर दिया, ये सब बेईमानी है, चोरी का पैसा इसको लोग देते हैं, तो कैसे भला हो सकता। और सब लोग लाला जी महाराज साहब भी, ताऊ जी भी बड़े स्ट्रिक रहे आखिरी। माया हमेशा अपनी तरफ खींचती, जब ईश्वर आपकी जरूरत पूरी कर रहा है तो क्यों आप किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं। ये ईश्वर मालिक है, वो आपकी जरूरत पूरी कर सकता। जब भी आपको देना हो, विधवाओं को, यतीम बच्चों को, बीमारों को, जरूरतमंदों, उससे हमेशा आपको परमार्थ मिलेगा, उससे हमेशा आपको परमार्थ। पैसे की भेंट किसी को अगर वो वाकई में परमार्थ के सही रास्ते पर है तो उसे कोई पैसे की भेंट की जरूरत नहीं। बाबूजी, हम लोग भी, गुरुदेव भी हमेशा अपना टिकट लेके जाते थे, जबकि उनको बहुत तंगी थी। भाई साहब की डेथ के बाद पहली बार तो पंकज गए, तो गोरखपुर वालों ने पैसे, उनका आदत आप खराब कर रहे हो, फिर बदनामी इनकी कर। तो दुनिया है जो वो करेगी, हमें क्या करना है, ये हम अपने विवेक से, हमने उन्हीं के सामने नहीं बहुत डांटा, हमको तुम हमसे क्या पूछ रहे हो, तुम्हें खुद बना करना चाहिए या नहीं। अगर नहीं खर्च कर सकते, कोई आने की जरूरत नहीं है कि तुमको कोई फायदा होगा नहीं होगा, भाई साहब की और बदनामी कराओ। और ये किताब पढ़िए जिसमें इन्होंने लिखा है, सपने में भी मैंने देखा तो भाई साहब पूछ रहे हैं क्या इतना पैसा है यार कि हम लोग किराए से दिलदार नगर पहुंचे। आज कह रहे हैं हाँ हमारे पास इतना पैसा है इस वक्त, हम ढूंढ लें। जब दिलदार नगर का जहां लिखा है, पैसा सबसे गिरावट की चीज, और इसीलिए देखिए संस्थाएं शुरू में जब तक भला काम करती रहती हैं, चलती रहती हैं, बाद में सब खराब हो जाते हैं, सब बदलाने के बायस हो। कोशिश यही करिए कि हमारे पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे। लाला जी महाराज साहब ने भी तीन चीजों पर जोर दिया, समय का यूटिलाइजेशन, पैसे का यूटिलाइजेशन, और दूसरे दीन और दुनिया का बैलेंस। अल्लाह हमेशा उन्हें दीन का भारी रखा, दुनिया को निभाया। उनके भी आठ लड़कियां थी, जिनमें से दो की डेथ हो गई थी, छह की शादी, दो लड़के थे, एक की शादी की, लेकिन किसी उसके वो नहीं। उनको अगर फॉलो करना है तो हमें उनके आदर्शों पर चलना होगा। ये नहीं है कि हमें लाला जी महाराज साहब या हमारे बुजुर्ग इस बात के भूखे थे कि हम उनके गुण गाएं। सबसे बड़ा गुण ये है कि हम उन जैसे बन जाएं, ऐसे वो बने थे, और वही लोग सक्सेस पा सकते। बचे हुए लोग यही था, इतने साल से आए, हमने इतने भंडारे, अटेंड किए, उसके दर्शन किए, फलानी फलानी जगह मजार पर गए, इन सब चीजों कौन डिनाई करता? एक भी गुण अपना लेंगे तो आप उन जैसे हो। तो उनने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया? किसी का और इसीलिए हमारे यहाँ खाली संतों की जीवनी पढ़ने के लिए, लाला जी महाराज साहब भी अपने टाइम के पुराने सब संतों को पढ़ते, भाव जी ने भी लिखा बेटे संतों की फिलॉसफी पढ़ने की नहीं, ये कौन मंदिर में गया, क्या चढ़ाया, क्या हुआ, ये सब दुनिया के अलग अलग रूप, परमार्थ का स्पर्श से कोई वो नहीं। और इसीलिए बार बार कहा कि आश्रम बन गया, वहां समाधि बन गई, बस इसका इतना ही क्रेडिट है कि हमारा पैसा किसी गलत काम में, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, स्थूल की चीज है, एक दिन खत्म हो। हमारा लक्ष्य ये है कि हम किस तरह से अपने गुरुदेव की और बुजुर्गों की याद को बराबर बना, अगर वो याद नहीं बनती तो खाली समय का नष्ट हो। घर पर बनती है तो घर बहुत अच्छा, यहाँ आती है कि एक जगह है जहां कल को घर में दिक्कत हुई, अब हमारे एक भाई ने कहा था एक बार दो बार समाधि बनी, वो कमरा बिल्कुल बेकार है, जबकि न उनने घर बनवाया ना कोई कंट्रीब्यूशन, तो ये सब जगह हुआ कोई वो नहीं। बस ये है कि जहां आपको अपने ईश्वर का ख्याल आए, गुरु का ख्याल आए, वही जगह। अभी शिव ने कहीं रहते थे, आश्रम कहीं था, उनके वहां का वातावरण देख के वैसे ही बना लिया। उसी तरह में कुछ हमें कुछ नहीं, किसी को कोई, हम ये देखने की हमारे गुरुदेव ने कैसे जीवन काटा और उनके कैसे गुणों को हम अपना सकते, उनके गुणों में कौन कौन सी चीजों को अपना सकते। असली भेंट होती है समय की, कितने समय का आप दान करें, और इसलिए गुरुदेव ने लिखा सबसे नीचे भेंट जो है वो पैसे।
मन का शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि जब तक मन साफ न होगा आत्मा के ऊपर से आवरण दूर नहीं होंगे और ईश्वर का प्रेम नहीं मिलेगा। मन का शुद्ध होना यही है कि ईश्वर का प्रेम जगने लगे। ईश्वर का प्रेम आत्मा में कुदरती है, लेकिन हमारे मन की वासनाएं, इंद्रिय भोग की ख्वाहिशें, बुद्धि की चतुराई और अपनी खुदी अहंकार, ये मन के चारों पर्दे उसको ढके रहते हैं। बजाय ईश्वर प्रेम के दुनियावी चीजों से प्रेम हो जाता है। जब अभ्यास वैराग और सत्संग से ये ख्वाहिशात शांत हो जाती हैं, तो मन के पर्दों का हटना है और इनके हटने पर जो ईश्वरीय प्रेम कुदरती छिपा हुआ है आहिस्ता आहिस्ते उभरने लगता है। मन की भेंट रुपए के मुकाबले में मन की भेंट ज्यादा अच्छी है। मन की भेंट क्या है? गुरु जो कहे उस पर यकीन करना, विश्वास करना, अपने ख्याल को उसके साथ शामिल कर देना और उसके कहे हुए को उसी शक्ल में कबूल कर लेना मन की भेंट है। इसके
भाई साहब जो थे उनको नाइट का ड्राइविंग बड़ी अच्छी लगती है। और बाबू जी कहते थे बेटे 12 बजे का भी गुंजाइश है सेठ के आने की। एक दिन जब जाने लगे तुमने कहा बेटे मत जाओ। अरे उन्होंने बाबू जी कितनी देर लगेगी, देहरादून माँ पोस्टर से, गाड़ी भी ज्यादा पुरानी नहीं थी, स्टेपनी भी ठीक थी। और हर वो कह रहे थे मुश्किल से 1.5 किलोमीटर जाते थे वो गाड़ी पंक्चर हो जाती। बोले रो दिए लेकिन साथ में दिया इतनी थी, ऐसी जगह पंक्चर होती थी रिपेयर हो सकती। जिक मार के वापस आ गए। उन्होंने कहा कहो भी सब ठीक है। तो बाबूजी का हमने तो बेटे मना कर दिया था। मन की भेंटी ही है गुरु जो कह दे उसमें ये नहीं। उन्होंने कहा कुर्सी बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम्हें मतलब नहीं कि ठीक है बेअदबी है, कोई मन होगा उनका भी तो बेअदबी है उसमें ये है ये वो है। और सबसे अच्छी भेंट जो होती है वो मन की। मनमता आदमी किसी जन्म में ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। एक जन्म से थोड़ी है, किसी जन्म में नहीं पहुंच सकता। और गुरुमता आदमी कि जो नहीं खराब क्यों ना हो, 3 जन्म वर्ष पहुंच जाता है। और इसीलिए अष्टावक्र जी ने काली जनक जी से निज मन का दान और कुछ नहीं। जो हमारे विचार होते हैं वही हमारा मन। उनका दीक्षा दे दो, उनका ये विचार अब कहाँ छोटा, मन तो अब हमारे पास है, हमें सोचना चाहिए। सबसे बड़ी दान जो है गुरु के लिए वो निज मन का दान। और सबसे पहले ही बड़ी पहचान यही है कि आपके उसके विचार मिल गए। अगर विचार नहीं मिलते तो मतलब ये है कि आप मन के मुकाम। आइडियल ये है कि तो उसके जीवन काल में ऐसा हो जाए, मरने के बाद इम्पॉसिबल है। नहीं हो तो किसी ऐसे शख्स को जिसको वो बता गया उसको पकड़ दीजिए। और कोशिश ये करिए कि उससे उसके जरिए से आफ्टर डेथ भी वो गुरु से विचार मिला। अगर आपको दुविधा है तो आप न दीन के रहेंगे न दुनिया के। फिर बुद्धि सही आपके मन को गाइड कर, यही बुद्धि का शुद्ध होना है। क्योंकि बुद्धि नीचे होती है वो हमेशा मन को गलत गाइड कर, सुबुद्धि ऊपर होती है जो आत्मा की तरफ होती है। और इसीलिए अच्छी सोसाइटी इस रास्ते के लिए बहुत मुफीद। लालाजी महाराज साहब ने लिखा है गैर जिंस की सोबत से परहेज। पहले बच्चा अपने माँ बाप को देखता है, फिर भाई को देखता है, फिर दोस्तों को देखता है, फिर सोसाइटी। और जैसी उसकी सोसाइटी होती है वैसे ही उसका असर बनता है। कहना आसान है, आसानी से खत्म करना बड़ा मुश्किल है। जब सेंस आता है तो समय बीत जाता है। सुल्तान डाकू ने आखिर ख्वाहिश ये थी हमारी माँ को बुला दिया जाए। जब वो आई तो उसने बड़े जोर से कान काटा। उनने कहा, अगर तू बचपन में मुझे ये सब नहीं सिखाती तो जब मुर्गी चुरा ला, अंडे चुरा ले, हमारा लड़का तो है ही नहीं, कोई छिपा कर रख देती तो आज मेरी ये नौबत ना आई। बगैर सोसाइटी के आदमी रहे वो बेटर है, परिंदर खराब सोसाइटी। ये सब खाली पुलाव है कि साहब हम खराब में भी रह के अपने को संभाल लेंगे, इम्पॉसिबल है। लाला जी महाराज साहब ने लिखा है, मुझे अफसोस है कि मेरी एक सोबत का अच्छा सा आपका नहीं। अगर आप मुनासिब समझे तो किसी और गुरु को भी करें, मुझे कोई तरह से। हमें आपको बस ये देखना है कि हमारे गुरुदेव, हमारे बुजुर्ग किस तरह से इस रास्ते पर चले और उन्होंने अपने सक्सेस प्राप्त, उसी रास्ते को हमें फॉलो करना। ये कह देना चाचा जी के टाइम में ऐसा होता था, बाबूजी के टाइम में ये हुआ, ये अपना समय का नष्ट करना। हाँ, किसी एक गुण को अपनाइए, तो फिर आप उनकी तरह बन। ये कोई नहीं कहेगा साहब बाबू जी 3 बजे से बैठ के पूजा करते थे, हम भी करें। अब बताइए कोई सब उनके कैसे, कोई साहब उठ ही भी नहीं सकता, शारीरिक कष्ट होता है, हमें दफ्तर जाना होता है बच्चों का, तो कहाँ आप उनकी तरह। उनका भी इतना बड़ा परिवार था, पहले दिन से हम लोगों से कह सकते थे कि बेटे हम जब 79 में ट्रेनिंग में हम दिल्ली गए तो हॉल में मसेरी पड़ी रहती थी, उसी पर आप लेटते थे। उनका बेटे अपनी चारपाई हमारे बगल में डाल, क्योंकि कभी इत्तफाक नहीं पड़ा, उनसे डर भी बड़ा लगता था। तो उनके बाबू जी ये गले क्यों डाल रहे, उनका नहीं नहीं बेटे यही डाल दो। काफी दूर डाली दूसरे कोने, तब भी उन्होंने कहा बेटा इधर पास पूछ लो। तो वैसे ही नींद नहीं आ रही थी, 3 बजे के करीब साहब हमको बड़ी पेशाब लगी, तो उठे बड़े धीरे से, कुंडी खोली, बाहर गए। जब लौट के आए तो देखा बाबू जी बैठे हुए हैं, तो हमने कहा आपकी आंख खुल गई, हम इसीलिए नहीं बोले। बेटे नहीं, आज 10 साल से हम 12 साल से इसी से 3 बजे उठ जाते हैं, बड़ी गृहस्थी है, फिर बच्चों की चिलपोल शुरू हो जाती है, और बेटे हम अपने सब 3 बजे से लेके 6 बजे, और 6 बजे तुमने देखा होगा, उसके बाद कभी नहीं कहा। गुरुदेव के पास जब MBBS फोर्थ ईयर में थे तब तक लेट जाते थे, जहां उन्होंने कहा बेटे लेट जाने, नींद नहीं आएगी तुझे। तो खाली बताने का जरिया था कि हम ये करते हैं, हमें वो करना चाहिए जैसा उनने किया और उससे उन्हें सक्सेस प्राप्त हो, तब तो हम असली कहला सकते हैं कि हाँ साहब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। खाली हम उनको गुणों को गाते रहे तो ये भाण का काम है। हमें तो ये देखना है किस तरह से किस उसमें उनने कठिनाइयों में जीवन व्यतीत किया और कभी भी डिगे नहीं। गुरु मते का मतलब ही यही होता है जो गुरु ने कह दिया। और बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमने और भाई साहब ने कभी भी उनने जो कह दिया वो बहुत हुआ था। यही दो एक वर्ष से भाई साहब के आने जाने का तो बाबूजी ने वॉरंट टोक दिया। कि उनने जो कह दिया उसके बाद अपनी कोई अकल नहीं। अगर आप अकल लगाते हैं मतलब आप उनसे भी उससे सहमति नहीं है तो कैसे वो आपको दया करें, कैसे आपके लिए प्रार्थना करें। और इसीलिए समय के दान के साथ साथ मन का दान, मन का दान ही है कि आप गुरु मते हो। और जिस रोज आप गुरु मते हो जाएंगे फिर फैक्ट ये है आपको कुछ नहीं करना। ये काम आपके जीवन काल में ही हो सकता है। जीवन काल में ही हो सकता था। और यंग एज में आदमी की खाली शक्ति ज्यादा होती हो सकता, ओल्ड एज में हो ही नहीं। तो कोशिश यही करिए, जीवित है गुरु के ख्याल को रिसीव करिए और जैसा वो कहे वैसे चलिए, जैसा वो कहे। हमारे छोटे मामा की लड़की गुड़की की शादी हुई, उनने कार्ड भेजा, हमारे पास भी भेजा, भाई साहब पास भी भेजा, बाबूजी पास। हम लोगों ने वाह वाह में 500-500 रुपए भेज दिए। ईश्वर की दया थी, इस बार प्रैक्टिस भी थी। बाबूजी को चिट्ठी लिखी तो मामा का कार्ड आया था और हम लोग पास। उनका बेटे वो तो महाबेवकूफ थे लेकिन तुम लोग भी बेवकूफ। उनने खाली इस नियत से भेजे थे तुम्हें पैसे, मेरी जिंदगी में उन्हें खाली मेरे पास कार्ड भेजना चाहिए। अब देखिए टेक्निकली भाई जब पेरेंट्स अलाउड है तो कोई वो नहीं था, फिर कभी नहीं। हम लोग के यहाँ की कोई फंक्शन हुआ उन्हें देख लेना बेटे तुम्हारे खानदान में, पूछ लेना उनके यहाँ जैसा होता हो ससुराल में कर देना। भाई साहब के यहाँ हुआ, उनने कभी हमें नहीं लिखा तो कुछ कर दो वो कर। और कभी हम लोगों ने तो ये चीप पॉपुलरिटी थी कि हमने अपनी उनके बेटे तुम्हारा पैसे का भी दुरुपयोग होगा, उनने घर में आइंदा भी हमें कोई नहीं पूछेगा, हमारी जिंदगी में हो सकता है वो पैसे के तुम्हारे उसमें ज्यादा आता रहे तुम्ही को पूछते रहते, इससे घर का व्यवस्था बिगड़ जाती। तो जो उन्हें नियम सबने बनाए हैं उन्हें फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। बचे हुए इसीलिए लोग कहते हैं साहब हम इतने दिन से आ रहे हैं, ये है, हमने भंडारे अटेंड किए, फतेहगढ़ गए, फलाने जहाँ थे वहीं है। उसका कारण यही है कि वो लोग मनमते हैं और जो चीज करनी चाहिए थी वो नहीं थी। खाली दो चीज कर ले, हम चैलेंज करते हैं एक जन्म में, खाली हर वक्त हर सांस में अपने गुरु को याद करता रहे, ओम का जाप करता रहे और हर वक्त अपने गुरु के रूप को सामने रखे, कोई धोखा ही नहीं है किसी। लेकिन देख लें 70 साल से हम भी करते चले आ रहे हैं और 70% ही पहुंचे हुए, सांस ओम के जाप से, खाली सांस का, आपको हर सांस में अपने ओम का जाप होता है हर वक्त। तरीका ये था हमारे गुरुदेव ने कहा नहीं बेटे, पहले उनने हमें खाली रूप बताया था और ये कहा था अच्छा एक एक घंटे पर कर लिया करो, आंख बंद की और थोड़ी देर ध्यान कर लिया हमारा, उसके बाद नाम का जाप ही नहीं बताया था। '69 या '70 में उन्होंने कहा नहीं बेटे अब हमारा आखिरी वक्त है, अब हर सांस में ओम का जाप किया। हमारा व्यक्तिगत यह है कि अगर आदमी शुरू से ही दोनों काम करता रहे तो उसकी आसानी से पिकअप होगा बनिस्पत इसके कि वो नुकसान उनका इंडिविजुअल हमारे लिए था, सबके लिए नहीं। तो खाली अगर करता रहे तो कोई धोखा नहीं है, चाहे किसी कारण बस मजबूरी में उसका एक आध भंडारा छोड़ जाए कोई, वहां बैठ के भी अगर तुम दुनिया सोच रहे हो तो काहे की पूजा हो, पहले के बारे डॉक्टर साहब भगा देते थे सबको तो बड़ा बुरा लगता था, 25 आदमी में से 18 आदमी को जरूर भगा देते, भाग यहां से। तो उनका ताओ जी अगर इनको आप बुलाते रहे तो एक दिन सब भाग जाएंगे। और वो लोग थे जो के वहां बैठे हुए कोई कुछ सोच रहा है, किसी को कुछ ख्याल थे, उनका बेटे वो तो तुम ठीक कह रहे हो लेकिन ये है कि इनके ख्याल से दूसरे जो 5 अच्छे हैं वो भी खराब हो जाए, इस वातावरण को। तो ताऊजी बाऊजी ने 2 लेयर बनाई, कुछ लोग सेलेक्ट किए उनको अलग से वो थे और जनरल लोगों को आए उन्होंने कहा हाँ भाई बैठे रहो ये करते रहो, कोई मजबूरी थी। डॉक्टर साहब ने उसका तरीका ही अपनाया कि वो सबसे नहीं बोलते थे, लखनऊ में 2 आदमी तुमने सेलेक्ट किए उन्हीं के साथ वो मेहनत करते थे, उनका मुझे क्या फायदा सबके साथ मेहनत करने से, मेरा समय भी कम। और जो उनने कह दिया बचे हुए स्टेशन पर सबसे उनने हाथ जोड़ लिए और उन्हें कोई मतलब नहीं था कि कौन कहाँ रहते हो क्या। ताऊजी बाऊजी ने उनका ठीक है एक तरीका वो लालाई जी महाराज साहब का अच्छा है कि साहब सबसे पूछते रहिए बात बाकी है, बाबूजी का भी दाना डालते रहो, चिड़िया भी आएंगी हंस भी आएंगे, हंस को सेलेक्ट कर लो, चिड़ियों को छोड़ दो, खाना खा के अपनी उड़ती उड़ चल जाएंगी, हम क्यों अपना टाइम कराओ। ध्यान का तो मतलब ही है आपको कि आप है आपके गुरुदेव है, बीच में कोई मतलब ही नहीं, कोई ख्याल आता है इसका मतलब दुनिया आपका डोमिनेट कर रही है, दुनिया के विचार आप पाले हुए तो काहे की पूजा हो गई, काहे का सत्संग। अक्सर जो पुराने दीक्षित लोग हैं उन्होंने कहा अच्छे भाई 11 माला ओम शांति की जाप कर लेना, किसी माला की जरूरत नहीं है अगर आपका मन शुद्ध। वो खाली ये थे ताकि आपके विचार एकाग्र हो के एक जगह आ जाए और आप उसे सुन जाए। आखिर लोगों को दीक्षा दी, एक आता जाता था, बावजूद ये भी नहीं मालूम था कौन आ रहा है। हम ठीक है, तुम इनके पास जाते रहना। तुम इलाइज ये भी थे, बाकी उनकी नहीं उनके गुरु की। एक राजा के भाई को नहीं दीक्षा देना चाहते थे, कारण क्या था? कभी माताजी ने बहुत कोशिश की, उन्होंने कहा देखो सत्संग के मामले में तुम्हें कोई इंटरफेयर करने, मेरे बाद भी जो श्रद्धनु कह दे सत्संग। उनने आखिरी वक्त था वो कहा, भाई साहब ने बड़ी कोशिश की, तो भाई साहब कहते थे हम आते थे जब भाई पैर उड़ दाब देता था, थके थकाए आराम मिल जाता। एक बार तक कोशिश की तो इत्तेफाक से वो मिला ही नहीं। इस भीड़ वाले उसने कोशिश की जिसने सबको सामूहिक दी है, तो आते ही बावजूद अरे तुम कैसे जा बैठे। उसकी नौकरी लगवाई इन्हीं हमारे चाचा के लड़के से कह के, और बाद में वाकई में उसने एक ऐसी हरकत की जो के दीक्षा वाले याद। अब कई बार से भाई साहब ने पूछा, तो जरूरी नहीं है कि आप दीक्षा लिए हैं नहीं लिए हैं। सवाल यह है कि जिसका आप ध्यान करते हैं वो उसके बीच में दुनिया नहीं पहुंची है, तो फिर ध्यान नहीं खाली दिखावा। इसीलिए 80% लोगों से पूछे उन साहब हम जाप कर लेते हैं, वो यार ध्यान का टाइम ही नहीं रहता। ध्यान इसलिए नहीं करते तुम्हें भीतर की चीजें दिखाई पड़ती, तुम्हें अपना असली रूप दिखाई पड़ता कि हम भीतर क्या क्या लिए बैठे। आपने गायत्री मंत्र पढ़ लिया, नरोत्तरी पढ़ ली, ओम शांति का जाप कर लिया, तो रहे तो इंद्रियों पर ही, इंद्रियों से तो ऊपर बढ़े नहीं, तब कैसे आप बुद्धि के तक पहुंचेंगे, कैसे आत्मा तक पहुंचे। पहले अपने अंदर को खाली करें कि एक दिन का सौदा नहीं है, जीवन भर का सौदा है। इस पर आज 10 साल आपने हटाए, 10 की जगह नहीं तो 8 नए भी आ गए। इसको ईश्वर के नाम से इतना भर दीजिए और गुरु के ख्याल से कि इसमें कोई दूसरी चीज जाने ना पाए। कोई बर्तन भरा हुआ होगा उसमें आप पानी डालेंगे तो बाहर ही निकल जाए, जब बर्तन खाली है तो पानी आएगा। पानी आएगा कभी ये चिंता कभी वो चिंता, इसका मतलब दुनिया हम अपनी समझ बैठे हैं तो कैसे मतलब आज लड़के का ये हो जाए, आज फलाने का ये हो जाए, ये सब दुनिया। ईश्वर ने उसकी किस्मत अलग बनाई है, हमें जितनी सहायता हो सके उसकी करते, और इसीलिए उसने भेजा है। हमारा आप ठेकेदार नहीं है कि साहब उसकी नौकरी लग जाए, उसका ये हो, उसका भविष्य ठीक हो जाए। हाँ, हमारी आपकी ड्यूटी है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हम उसकी मदद कर सके, जायज मदद कर सके, वो अवश्य। और जब हर वक्त आप उसको याद करते रहेंगे, आपका बर्तन खाली नहीं है। पहली चीज समझ में नहीं आती, एक बार तो बड़े सीनियर लोग बैठे हुए थे, किसी को 20 साल से किसी, तो हम लोग को शुरू से बताया गया था कल भाई तुम हमारा ध्यान करते रहो, कुछ करना नहीं। जब पूजा खत्म हुई रात को ये लोग डिस्कस करते थे कि पकड़ाने की कैसी, तो ताऊ जी ने कहा कि बेटे श्यामलाल तुमने देखा जो हमारे बच्चों की हालत थी, उस सफर इतने इतने दिन की हो गई ना, हम लोग को ये भी नहीं मालूम क्या हालत थी क्या। फिलहाल दूसरे दिन सब लोगों से कहा तुम्हारी हालत अच्छी नहीं, हमारी हालत अच्छी। पूछा उनसे तुमने कहा अच्छा बताओ बेटे तुम क्या कर रहे हो? हम कुछ नहीं, आपने बताया था आप रूप का ध्यान करते रहे, बस वही करते रहे। बोले कोई ख्याल तो नहीं आया, हम कोई सेवा इसके और कोई उन्हें बेटे यही असली ध्यान, ये सोच रहे थे, ये सोच रहे। उन्होंने 5-6 लोगों के बारे में बताया, उन्होंने कहा ये और समझते हैं मैं बेवकूफ़, मुझे धोखा दे रहे। उन्होंने जब मैंने पूछा तो झूठ और बोले। ध्यान का मतलब ही ये है, आप हैं, आपका इष्ट है और कोई चीज भी नहीं, बीच का दुनिया ख्याल है। जितने दुनिया के ख्याल आएंगे उतने ही मतलब आप दुनिया में फंसे, डोमिनेट कर होगा ये धीरे धीरे। उस वक्त जाप का आप इस्तेमाल कर, उस वक्त आप जाप का और भजन का, ये नीचे की लेवल है इंद्रियों तक का काम, इससे मन नहीं शुद्ध होता। मन की शुद्धि खाली यही है कि आप हैं आप तो। इसके लिए जितने देर लगे 10 मिनट 5 मिनट, लेकिन कोशिश ये करें तो सही तरीका ध्यान का है और उतनी देर। अगर ख्याल आता है तो वो वापसी का ख्याल है, कोशिश करें हट जाए, नहीं हटता फौरन जागरूक पड़ती, मन से कोई जद्दोजहद करके नहीं जीत सकता। उसको समझा के प्रसामत करके जीत सकता है कि भाई देखो इससे बड़ी बदनामी होगी, लोग क्या करते हैं। तो किसी तरह से प्रो एंड कौन समझा के ही मन से जीत सकते, मन किसी शख्स को जो चाहे वो करा दे, क्योंकि उसके साथ बुद्धि और इंद्रियां होती, तो हम क्यों उसको बोलोगे? जब गुरु के रूप का आपको काल होता है तो वो हर वक्त आपके सामने है और उसके अदब से आप बचे रहते, उसके अदब से बचे रहते हैं। अगर बराबर ओम का जाप करते रहेंगे तो ये है कि नाम के साथ माया डरेगी वहां आने से जहां पर भूखा नाम, इसलिए बच जाते, ना कि इसलिए कि हम लोग इतने एक्सपर्ट हो गए कि साहब उस दुनिया से जब किसी को नहीं नारद मुनि कोई ऋषि मुनि बता दीजिए जो पहुंचा, नॉट ए सिंगल। नारद मुनि जैसे जिनको रोज दर्शन होते थे, जो विष्णु भगवान के साथ रहते थे, उनका भी हाल आप जानते। लेकिन जो नियम है प्रभु का, उन्होंने कहा भाई कुछ भी कर ले, लेकिन जो मेरे आदमी मैंने छोड़ नहीं सकता। अब वो तो उनकी लीला थी, लेकिन जब वनवास में गए तो बहुत दुखी हुए, तब उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा भी ये स्वभाव है कि मैं अपने आदमियों को छोड़ नहीं सकता, और यही गुरु का स्वभाव। कितने लोग ऐसे हैं जो के बच्चे खराब होते हैं छोड़ देते, रिश्ता बाप बेटे का होता है, कोई बाप अपने बेटे को नहीं छोड़ता, इसी तरह कोई गुरु भी नहीं, वो भी सोचता चलो भाई हो गया अभी। तो कोशिश यही करिए कि हमें उनके गुणों को अपनाना, एक एक करके, एक दिन में सब नहीं आते, एक एक करके अपनाते चले कि ये क्या करते थे, कैसे रहते थे, इन्हें अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया। हम लोग बहुत कम है, गृहस्थी बहुत कम है। लालाजी महाराज साहब के 8-10 बच्चे थे, बाबूजी महाराज साहब के 11 बच्चे थे, सब कुछ होते हैं, सबके यहाँ डेथ हुए और उस भवसागर से वो लोग निकले। तो हम लोग तो तब भी ये है कि दो दो बच्चा है, तो कहाँ मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सब। अब तो ये है कि हम लोग जान के फंसे तो उसका कोई ईश्वरी बेहतर जान। हल यही करिए कि किस तरह से, और यही है किसी को अच्छे काम में कभी जो भी दान मत कर, प्रशंसा के लिए कभी दान मत करिए किसी। और यही मन की भेंट, मन की भेंट सबसे उत्तम भेंट, समय का दान सबसे अच्छा दान, और गुरु बस इसी दो चीज की रहता है कि किस तरह से उसके कहने के मुताबिक वो चलता है।
कहे उस पर विश्वास करना, यकीन करना, अपने ख्याल को उसके साथ शामिल कर देना और उसके कहे हुए के उसी शक्ल में कबूल करना मन की भेंट है। इसके दो रूप हैं, एक मजबूरी से कबूल करना, दूसरा खुशी से कबूल करना। खुशी से कबूल करना यह है कि फला काम मेरे गुरु का है, उसको लगन से चाव से करना चाहिए। इसका नतीजा ये होता है कि मन का रूप बदल जाता है। उसके ख्याल को खुशी से कबूल करना मन को तोड़ देता है। जिसने मन को तोड़ दिया वो कामयाब है। आप में ख्वाहिशातें जन्म जन्मांतर से दुनिया की थी, उन्हें पूरा करने के लिए ही मालिक ने आपको दुनिया में भेजा है। आपकी आत्मा ने मनुष्य शरीर धारण किया, उसके ऊपर ख्वाहिशात का पर्दा था। ईश्वर की शक्ति से ही काल ने इस दुनिया को रचा। ईश्वर ने जीवों को यहाँ भेजा ताकि होश में आ जाएं। इस दुनिया को भोग कर उसका रस लेकर ख्वाहिशात को भोग कर उपराम हो जाएं और अपने धाम को वापस चले जाएं, जो उनका असली ध्येय है। किसी न किसी तरकीब से उनमें जागृति आ जाए। यह दुनिया उसी का पसारा है, लेकिन जो यहाँ आकर रस लेते लेते फंस गए। ख्वाहिशात दुनिया के रस और आनंद की इतनी बढ़ने लगी कि आत्मा पर संस्कारों के गिलास चढ़ने लगे, बजाय कम होने के और चढ़ते गए, और जीव में जो पहले से बंधन में जकड़े हुए थे और ज्यादा बंधन में जकड़ गए। दुनिया की यह हालत देखकर जीवों के उद्धार के लिए ईश्वर ने दया करके संत प्रकट किए। उन्होंने दुनिया को उजाड़ा नहीं, कायम रखा, क्योंकि दुनिया उजाड़ कर तो असल मकसद पूरा नहीं हो सकता। संत जीवों को दुनिया की ख्वाहिशों से उपराम कराकर दुनिया से वैराग और ईश्वर से अनुराग करा के अपने धाम को वापस ले जाते हैं। अवतारों और संतों में भेद है। अवतार जितने भी आए सब काल देश से आए। काल कभी ये नहीं चाहता कि दुनिया उजड़ जाए। लिहाजा जब जब दुनिया में बुराई और अधर्म बढ़ा, अवतारों ने आकर बैलेंस संतुलन कायम किया, बुराइयों को रोका और भलाइयों को बढ़ावा दिया ताकि दुनिया कायम रहे। जैसे कोई जमींदार है, वो अपनी रियाजा को उजाड़ता नहीं, कायम रखता है। जब मैं डॉक्टरी करता था उस वक्त की एक बात यहाँ मुझे याद आ गई। एक जमींदार थे, उनके गांव में हैजा फैला। उन्होंने मुझसे कहा, आप मेरे गांव में मरीजों का इलाज कीजिए, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका खर्च मैं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा रियाया मुझसे खुश रहे। इस तरह रचना को कायम रखने के लिए अवतार आते हैं। संत तलवार से काम नहीं लेते, प्रेम से काम लेते हैं। अधर्मी लोगों का नाश नहीं करते, बल्कि अधर्म का नाश करके परमार्थ पर चलना सिखाते हैं। रचना होने से पहले आत्माएं अचेत अवस्था में थीं, जो प्रेम के आकर्षण से खिंच गईं और दयाल देश बन गया। वह आत्माएं जिन पर मन का पर्दा, वासनाओं का पर्दा था, वह अचेत अवस्था में पड़ी नहीं और प्रेम के आकर्षण में नहीं आई। अगर वह वहीं रहती तो उसी अचेत अवस्था में पड़ी रहती। उस दयाल शक्ति की इतनी कृपा से उनका उतार इस काल देश में हुआ, जहाँ पर उनके मन की ख्वाहिशात पूरी हो सके। यहाँ आकर वो अचेत से चेत अवस्था में आ गई और मन की ख्वाहिशात में फंस गई। अगरचे जाहिरी तौर पर वो मन की वासनाओं में फंस गई और अपने असली ध्येय को भूल गई, लेकिन अंतर के अंतर में उनका ताल्लुक उस दयाल शक्ति से बराबर बना रहा, और दुनिया के हर सुख भोगते हुए भी उनको यहाँ पर सच्चा सुख नहीं मिला। ईश्वर के तीन रूप माने हैं, एक ब्रह्मा पैदा करने वाला, एक विष्णु पालन पोषण करने वाला और एक शिव संहार करने वाला। ये तीनों देवता सृष्टि को कायम रखते हैं, और जब जब खराबी होती है विष्णु का अवतार आकर उस खराबी को दूर करके ठीक करता है। लेकिन संत मत में ईश्वर का एक चौथा रूप भी मानते हैं, जो संत या गुरु है और जो दुनिया से छुड़ाने के लिए आते हैं। जब जीव इस आवागमन से तंग आ जाता है और इससे छुटकारा पाने का ख्वाहिशमंद होता है, तो ईश्वर का चौथा रूप संत रूप इंसानी शक्ल अख्तियार करता है, और जो लोग अधिकारी जीवन मुक्त होना चाहते हैं उनको अपनी सोहबत से फैजियाब कराकर अपने धाम यानी दयाल देश को वापस ले जाता है, जहाँ जाकर फिर वापस नहीं आते। इस तरह जीव हमेशा के लिए आवागमन से छूट जाता है। बाकी जीवों पर जो उसकी सोहबत में आते हैं उन पर भी उनका असर पड़ता है और वे भी आगे चलकर धीरे धीरे अधिकारी जीवों की श्रेणी में आ जाते हैं। ये दुनिया काल की रचना है। यहाँ पर जो कर्ज लिया है वो जरूर चुकाना होगा, यानी जो कर्म किए हैं अच्छे या बुरे उनका एवज बदला जरूर मिलेगा। मन दुनिया में लगा है, आत्मा अपने देश को जाना चाहती है। मन का रुख नीचे की तरफ है और आत्मा का ऊपर की तरफ, दोनों में बड़ी जद्दोजहद होती है। जब मौत आती है तो जान हाथ पैरों में से खींचकर ऊपर को सिमटती है। जब इंद्रिय और गुदा से निकल जाती है तो पेशाब या पैखाना छूट जाता है। हृदय से निकलने पर दिल की धड़कन बंद हो जाती है और नब्ज छूट जाती है। गला कंठ चक्र से निकलने पर घड़घड़ाने लगता है, वहाँ से निकलने पर आंखों की ज्योति जाती रहती है। उसके बाद भौहों के बीच के हिस्से से होकर ऊपर चढ़ती है, वहाँ एक टेढ़ी सी पतली नली है जिसे बंक नाल कहते हैं। जब इसमें से होकर गुजरती है तो बड़ी तकलीफ होती है। आत्मा ऊपर को खींचती है और मन की जो गांठें हैं उसके साथ बंधी हैं वो उसमें से निकल नहीं पाते, टुकड़े टुकड़े हो जाती है।
ये जो आत्मा ऊपर आसानी से नहीं निकलती, आपने देखा हो बहुत से लोगों की आंख खुल गई, मुंह खुल गया, तो ये इंद्रिय के पार्ट थे जैसे आत्मा एट पार्ट। शास्त्रों ने इसीलिए कहा कि नहीं साहब यहाँ मार दीजिए जहाँ से एंट्री हुई है, उसे नहीं मालूम जिसे बांस देते हैं वो आपसे ये नहीं कहेगा यहाँ मारिए, ये जानता है कि यहाँ ये कपाल क्रिया करती है ताकि आत्मा इनफॉर्म निकल जाए। जिस वक्त घर घर हरेक के होने अगर पेपर पढ़े तो परसों में वो डॉक्टर एसबी थी, उन साहब सबसे पहले जो है उनको साहब घर घर शुरू हुई वेंटिलेटर पर लेती है। वेंटिलेटर कुछ नहीं, बेवकूफ बनाने का डॉक्टरों का जरिया है, पैसा वसूल करने का है। 99% लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, 1% के लिए एक अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी एनर्जी। और तो जहां आत्मा ये घर घर करने लगती है तो उसके बाद जो पोर्शन आत्मा का है जब वो यहाँ आता है तो ये प्लेस आसानी से नहीं छूटता। और इसीलिए किसी की आंख किसी का मुंह खुलते हैं, दौड़ के लोग मुंह बंद करते हैं कि हो सकता है एक और मौत मांग रहा है, आंख खुली रहती आंख बंद करते हैं ताकि आत्मा बेसिस यही है कि आत्मा यहाँ से कपाल क्रिया करते हैं। खाली इसका यही मतलब है आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर में सब हड्डी अलग कर, कभी देखिए तो देखिए सब हड्डी अपने आप अलग हो जाएंगे, किसी क्रिया की जरूरत नहीं। लेकिन यह है क्योंकि वो याद रहे लोगों को उस रसम से कि साहब हमारी आत्मा निकल गई है, इसलिए कभी हार्ट बंद होने पर डॉक्टर नहीं डिक्लेयर करता। घर घर होती तब जब वो अपनी आंख की पुतली को देख लेता है टच करके तब वो डिक्लेयर करता, क्योंकि सबसे ऊपर की इंद्रिय। और यही प्रोसेस हर शख्स पर रिपीट होता है, किसी में जल्दी होता है किसी में देर में होता है। 50-60% में आपको हर चीज अपरेंट मालूम होगी कि सब ये इस सेंटर से चली गई, इस सेंटर से चली गई, अब इसकी स्थिति। दो ही शख्स इसमें सहायक होते हैं, डॉक्टर बालक राम जी को हमने देखा, कृष्ण भगवान के बड़े अच्छे उपासक। आखिर में हरेक को ये लगता है कि हमने कृष्ण भगवान को तो देखा नहीं था, क्या हम सत्य हैं कि नहीं, यही मन हो तो घर का ही नाम लेते थे। बोले बेटे दिनू कि कृष्ण भगवान को तो देख नहीं रहे हैं लेकिन वो तुम्हारे यहाँ एक उनको तुम लोग लाला जी कहते तो उनको डॉक्टर श्यामलाल को देख रहे हैं। ये बाऊजी की वो थी कि दया करके उनने अपने गुरुदेव से कनेक्ट करा और उसके बाद उनकी डेथ। तो आत्मा के फिक्स रास्ते हैं निकलने, और क्योंकि यहाँ से एंटर होती है लिहाजा हमारे शास्त्र ये कहते हैं कपाल क्रिया कर दो तुम निकल। लास्ट उससे बड़ी मुश्किल छोड़ है, दुनिया शरीर छोड़ने ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके और यही कबीर दास ने कहा जस ओड़ी तसरक दी चुका, यानी जैसी हमें दी थी प्योरिफाइड वे में वैसी प्रभु हमने आपको वापस कर, डिफरेंट लोगों के नाम नहीं, इसने ओढ़ी उसने ओढ़ी, लेकिन हमने जब ओढ़ी जैसे की तो अगर आपके उसमें खाली ईश्वर का नाम है या एक ख्याल गुरु का ख्याल है दूसरा है ही नहीं, तो नेचुरली जैसी प्योरिफाइड आई थी वैसी प्योरिफाइड आपकी शुरू, और यही अंतिम भेंट होती है जो हर एक का मनुष्य का फर्ज है कि उस मालिक ने जब पैदा किया तो उसकी अंतिम भेंट आत्मा उसी के चरणों में, और यही लक्ष्य होना चाहिए, यही लक्ष्य होना चाहिए, और वो तभी संभव है जबकि खाली उसका नाम रह जाए और आपको दुनिया की कोई ख्वाहिश ना। गांधी जी ने उसी को तीन मंदिर, अच्छा बोलो अच्छा सुनो, इंद्रियों का कंट्रोल, अच्छा देखेंगे हमारे विचार अच्छा, अच्छा सुनेंगे हमारे विचार अच्छा, बोलेंगे हमारे अंदर अच्छे संस्कार पैदा, साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है Try to reduce your desires, otherwise they will come, they will go on increasing and you will die. हमको अपनी इच्छाओं को कम करना ताकि वो इतनी न बढ़ पाए कि वो हमें वक्त आखिर पर नीचे दिखा। और यही असल अभ्यास कि किस तरह से हम अपनी इच्छाओं की सीमाओं को कम कर ईश्वर के नाम को बढ़ाते हैं। जो पावरफुल होता है वो हमेशा अपने तरफ खींचता है, ईश्वर के नाम में बड़े वैसे ही बड़ी शक्ति होती है, इच्छाएं नीचे की तरफ खींचती हैं, और ईश्वर दया करके वो ताकत आपको देता है कि आपको, और ये असल पूजा और
आदमी हाथ पांव छटपटाता है, कुछ बोल नहीं सकता, इस मुकाम पर बहुत अंधकार होता है। संत जब जाते हैं तो बातचीत करते करते जाते हैं, उन्हें तकलीफ नहीं होती, लगता है जैसे सो रहे हों। जिस रास्ते मौत होती है उस रास्ते संत रोज गुजरते हैं, रोज मरते जीते हैं। मरते जीते हैं